हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। देखते ही देखते वहाँ पर अजीब सा कंपन वहाँ शुरू हो गया था और वो सारा का सारा पानी बह निकला था, जिसके बाद तारा परी के हाथ में रानी माँ की जादुई छड़ी थी और एक हाथ में रीत परी का शरीर का आधा हिस्सा था। जैसे ही सोनल परी ने ये देखा, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और वहीं वो तीनों के तीनों असुर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और मन ही मन में सोचने लगे थे कि आखिरकार इस परी के अंदर इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आ सकती है। उन्हें इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि ये इस परी के पास अपनी शक्तियों के साथ साथ जिन्नातों के वंशज की भी शक्तियाँ थी और साथ ही साथ उस राक्षस की भी ली हुई हुई शक्तियाँ थी जिनके द्वारा उसने उन असुरों का मुकाबला किया था। तब तारा मन ही मन में सोचने लगी थी, राजा विक्रम सिंह उर्फ राक्षस, तुम्हारी शक्तियाँ वाकई कहीं अच्छे काम के लिए काम आई हैं। ऐसा कहकर तारा परी उन तीनों असुरों को घूर कर देखने लगी थी और अपनी जादुई छड़ी से उसने एक बार फिर उन तीनों असुरों पर वार कर दिया था और देखते ही देखते वो असुर काले रंग की राख के ढेर में तब्दील हो चुके थे और तारा परी सोनल परी और रीत परी के धड़ के साथ रानी माँ की जादुई छड़ी को लेकर वहाँ से गायब हो चुकी थी और सीधा परीलोक में जा पहुंची थी। जैसे ही रानी माँ ने तारा परी सोनल परी को सकुशल देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और जाकर उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया था। तभी तारा परी ने रीत परी के धड़ को जीवित कक्ष में रखवा दिया था क्योंकि उन्हें आज शाम को ही रीत परी को जीवित करना था। वहीं तारा परी ने रानी माँ को उनकी जादुई छड़ी लौटा दी थी। वो अच्छी तरह से जानती थी अगर रीत परी को कोई जीवनदान दे सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ रानी माँ की जादुई छड़ी ही थी, तो इसीलिए सभी ठीक शाम को तारा की छाँव में उसे कमरे में पहुंच चुके थे जहां पर रीत परी के दोनों धड़ रखे हुए थे। दोनों धड़ को एक जगह रखकर तारा परी, रानी परी, सोनल परी और साथ ही साथ सात कुल मिलाकर परीलोक की सात परी ही किसी मृत परी में जीवन फूंक सकती थी। और सातों परी ने कुछ जादुई मंत्रों के साथ सभी ने अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल रीत परी के ऊपर करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते रीत परी का धड़ और कटा हुआ सर आपस में जुड़ने लगा था और देखते ही देखते रीत परी का पूरा जिस्म एक हो चुका था और रीत परी ने अपनी आंखें खोल ली थी। जैसे ही रीत परी ने अपनी आंखें खोली तो सभी परियां खुश हो गई थी। रीत परी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तभी तारा परी ने ध्यान दिया कि भले ही रीत परी के जिस्म में जान फूकी गई हो और वो ठीक हो गई हो, लेकिन उसके जिस्म पर लगे निशान वो ठीक नहीं हुए थे, जिन्हें देखकर रीत परी जोरों से चीखने चिल्लाने लगी थी क्योंकि उसे वो सब कुछ याद आ गया था जो उसके साथ परीलोक में हुआ था। वो रोने पीटने लगी थी। रीत परी को रोता चिल्लाता देखकर सभी परियां मायूस हो गई थीं और जैसे ही रीत परी ने तारा को देखा वो और ज्यादा पैनिक हो उठी थी। तब तारा रीत परी को शांत करने की कोशिश की थी। वो तारा के गले लगाकर वो बुरी तरह से रोने लगी थी। तभी तारा परी ने अचानक अपने जादुई नुस्खे से एक मलहम तैयार कर दिया था और वो रीत परी के घाव पर लगा दिया था। वो अच्छी तरह से जानती थी ये मलहम जरूर काम आएगा क्योंकि ये वही मरहम था जो उसने एक बार अमन के चेहरे पर प्रयोग किया था और वो बिल्कुल ठीक हो गया था। साथ ही साथ तपस्वी का कुछ ज्ञान भी उसके पास था, तो उसी का प्रयोग करते हुए उसने रीत परी के पूरे नग्न बदन पर लगा दिया था और रीत परी थोड़ी देर के लिए शांत होकर लेट गई थी और जैसे ही वो उठी थी उसके निशान एकदम गायब हो गए थे। इतना ही नहीं, तारा परी ने उसके साथ हुई घटना की यादें भी उसकी पूरी तरह से मिटा दी थी। वो अच्छी तरह से जानती थी इन घटना के साथ उसके लिए जीवित रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। रीत तारा को वहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी और कहने लगी थी, तारा परी आप आ गई हैं, आप नहीं जानती मैं आपको देखकर कितना ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा कहकर उसने तारा को गले से लगा लिया था और उसके साथ जो कुछ हुआ था तारा ने पूरी तरह से उसकी यादों को मिटा दिया था और साथ ही इशारों में बाकी की सभी परियों को इस बात के बारे में जानकारी दे दी थी कि भूलकर भी वो रीत परी के साथ हुए हादसे के बारे में जिक्र ना करें और सभी ने खामोशी से उसकी बात मान भी ली थी। तब करिश्मा जी ने अमन से कहा था, बेटा अगर हमें तारा बेटी को ढूंढना है तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है बगीचे में तेरे दादा महाराज से मिलने का। तेरे दादा महाराज जी हैं जो कि काफ़ी बड़े अंतर्यामी हैं, वो हमें बता देंगे कि तारा बेटी कहाँ है। हमें जल्द से जल्द बगीचे में जाना होगा और तेरे दादा महाराज से विनती करनी होगी कि वो हमें इस बारे में बता दे कि आखिरकार हमारी तारा कहाँ गई है। जैसे ही करिश्मा जी ने ये आइडिया दिया, अमन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी और अमन ने मुस्कुराते हुए करिश्मा जी का कंधा पकड़ लिया था और कहने लगा था, मॉम आप सोच भी नहीं सकती हैं कि आपने मुझे रास्ता दिखा दिया है। वाकई मैं तो तारा को लेकर सारी चीज़ भूल ही चुका था कि मेरे पास दादा महाराज हैं जो हर परेशानी में मेरी मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मुझे हर मुसीबत से बचाते हैं। हम एक काम करते हैं, हम अभी दादा महाराज से मिलने के लिए बगीचे में चले जाते हैं। ऐसा कहकर अमन, अमरेंद्र और करिश्मा जी के साथ साथ बगीचे की ओर रवाना हो चुका था। और जैसे ही वो लोग बगीचे में गए, उस टाइम रात का दूसरा पहर चल रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। पूरे के पूरे बगीचे में केवल सिर्फ और सिर्फ हल्के हल्के हवाओं के सन्नाटे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नॉर्मल इंसान अगर उस समय वहां पर जाता तो वहां जाने के बाद वो पक्का डर के मारे बेहोश हो सकता था, लेकिन इस वक्त तीन लोग जो वहां गए थे वो जिन्नात थे, जिनके पास को अलग अलग तरह की शक्तियाँ थीं। जैसे ही अमन बगीचे में गया, उसे कुछ अजीब सा लगा था। उसे एहसास हो गया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दादा महाराज जिस बड़े से बरगद के पेड़ पर निवास किया करते थे, उस पेड़ के नीचे हमेशा एक दिया जलता रहा करता था, लेकिन आज वो दिया बुझा हुआ था। तो ये देखकर अमन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। तभी करिश्मा जी ने अमन से कहा था, बेटा क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? यहाँ आकर मुझे कुछ अजीब तरह का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसके बारे में हमें नहीं पता था। और दादा महाराज का दिया क्यों नहीं चल रहा है? तभी अमन ने करिश्मा जी का हाथ पकड़ते हुए कहा था, मॉम आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ऐसा कहकर अमन थोड़ा सा आगे बढ़ा था और जैसे ही उसने बरगद के पेड़ के तने को जाकर छुआ, अमन के शरीर में एक अजीब सा करंट लगा था, जिससे अमन गिरते गिरते बचा था, क्योंकि अमरेंद्र जी ने उसे पीछे से पकड़ लिया था। तभी अचानक बरगद के पेड़ पर से एक आवाज़ सुनाई देने लगी थी, जिन महाराज अमन, अपनी बीवी के चक्कर में तुमने जिन्नातों का कोई काम नहीं किया है। तुम्हें जिन महाराज इसलिए बनाया गया है ताकि तुम सफ़ेद जिन्नातों पर आने वाली हर परेशानियों को दूर कर सको। इतना ही नहीं, अगर कोई सफ़ेद जिन्नात कोई बुरा या गलत काम कर रहा है तो तुम उसे रोक सको, लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की खूबसूरती में ऐसे खो गए कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं रहा। तो इसीलिए हमने तुम्हारे दादा महाराज को कैद कर लिया है। जब तक तुम तीन ऐसे सफ़ेद जिन्नातों को सज़ा नहीं दे देते जिन्होंने जिन्नातों का नाम खराब किया है, तब तक हम तुम्हारे दादा महाराज को वापस इस पेड़ पर निवास नहीं करने देंगे। जैसे ही अमन ने ये सुना, अमन का हैरानी के मारे बुरा हाल हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कौन था और कौन बोल रहा था। तभी अमन ने थोड़ी सी हिम्मत करते हुए कहा था, आखिरकार आप हैं कौन और इस तरह से मेरे दादा महाराज को कैद करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? तभी वो जो कोई भी थे वो जोरों से हंसने लगे थे और वो कहने लगे, हम कौन हैं तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और बात, तुम्हारी बीवी के जिस्म में जिन्नातों का वंशज बल रहा है, तो तुम अपनी बीवी को लेकर चिंता छोड़ दो, उसे कुछ नहीं हो सकता है। वो जहाँ भी है सही सलामत है और वो जल्दी ही लौट आएगी। लेकिन हाँ, जब तक तुम तीन ऐसे काम नहीं कर देते जिससे तुम तीन ऐसे जिन्नातों को सज़ा नहीं दे देते जिन्होंने जिन्नातों का नाम खराब किया है, तब तक तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। क्या? जैसे ही अमन ने ये सुना, उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये था कौन और बोल क्या रहा था। अमन के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ नज़र आने लगी थीं। एक तो बगीचे का माहौल ही इतना डरावना था, ऊपर से इतनी खतरनाक आवाज़। अमन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। और तभी अचानक करिश्मा जी ने हल्के से आंसुओं के साथ उसे कहना शुरू कर दिया था, हे मेरे परमात्मा, ऐसी बात मत कीजिए, मेरा बेटा मेरी बहू के बगैर नहीं रह सकता है। आखिर कहाँ है तारा बेटी? और हम वादा करते हैं हम अमन की मदद करेंगे उन ऐसे सफ़ेद जिन्नातों को ढूंढने में जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन तब तक आप इसे सज़ा मत दीजिए, हमें दादा महाराज लौटा दीजिए। जैसे ही करिश्मा जी ने इस तरह की विनती की, अमन हैरान हो गया था और उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके सामने कोई ऐसी हस्ती खड़ी थी जो कि सबसे सबसे ज़्यादा बड़ी थी।
तभी उस पीपल के पेड़ से एक बार फिर से आवाज आई थी। अमन के इस काम में कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा कि अगर किसी भी जिन्नात ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो अमन को जिन महाराज के ऊपर पादी से हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उसे जिन्नातों की दुनिया से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या? जैसे ही अमन ये सुनता जा रहा था, उसके चेहरे का पसीना और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या तारापरी पृथ्वी लोक आ पाएगी, क्या अमन तीन दुष्ट जिन्नातों को ढूंढ पाएगा। जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।